आज जो मैं एक बोझ को आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, ये मेरे हृदय का बोझ है, पीड़ा है, दर्द है। लगभग 40 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए। प्रभु ने अद्भुत रीति से उस उद्धार के आनंद को दिया जो प्रभु के सुसमाचार के द्वारा है, और धीरे 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 करके प्रभु ने बढ़ाया। और हम इस कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन सारे भाइयों के लिए, सब परिवारों के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, जो इसमें आ रहे हैं। लेकिन मेरी अभिलाषा, मेरी दर्द, मेरी पीड़ा यह है कि हम जो परमेश्वर के आराधक हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले, हम परमेश्वर के वचन को सही रीति समझ सकें, परमेश्वर के वचन को सही समझ सकें। और कलीसिया में जब कलीसिया बढ़ती है तो तीन तरह से कलीसिया में लोग जुड़ते हैं, तीन तरीके से कलीसिया में लोग जुड़ते हैं। पहले शायद वो मेरे समान हो, मैं जिस रीति से पृष्ठभूमि में मसीह परिवार में मैं जन्मा, मसीह परिवार में बड़ा हुआ, और मसीह परिवार में होते हुए, बड़ा होते हुए मेरा जो रीति विधि है उनके अनुसार मेरी भी, चाहे बैप्टिज्म हो बचपन में, बपतिस्मा हो, चाहे कन्फर्मेशन हो, वो सब कुछ के उस रीति विधियों को होते हुए मैं बढ़ता गया। और मैं अपने आप लिए सोचता था कि मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और क्योंकि मैंने क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है और मैंने चर्च में जाना आरंभ कर दिया, और मैं उसी रीति से आगे बढ़ता रहा। हो सकता है कुछ यहाँ पर ऐसे भी लोग हों इस समूह में जो इसी प्रकार से सोचते हैं कि मैं मसीह परिवार में जन्मा हूँ, मैं मसीह हूँ, मैंने मसीह की शिक्षा को पाया है, मैं कलीसिया में रहता हूँ, जाता हूँ, ये करता हूँ, करता हूँ, और मैं इसलिए मसीह हूँ। कुछ लोग हैं जो शायद बहुत परेशान थे जीवन में, हताश थे, शायद बीमारी उनके ऊपर थी, शायद दुष्ट आत्मा ग्रस्त कुछ ऐसा था, और वो इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे, परेशान थे। शायद किसी ने कह दिया भैया फलाने जगह चर्च में चले आना, वहां तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी। शायद वहां चर्च में गए, चाहे यहां पर या कहीं और किसी दूसरे स्थान में, और वहां पर प्रार्थना की गई और शायद आपको छुटकारा मिल गया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, बीमारी छुटकारा मिल गया, और आप बहुत आनंदित हो गए और आप उस कलीसिया में और कलीसिया में जुड़कर आगे बढ़ने लगे। तीसरे समूह में शायद ऐसे हो सकते हैं जो सच में धार्मिकता के भूखे और प्यासे थे, जो अपने पाप से लड़ रहे थे, अपने पाप से संघर्ष कर रहे थे, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, और जीवन में संघर्ष करते हुए, पाप में संघर्ष करते हुए उनके हृदय में अभिलाषा थी किसी प्रकार से उस सच्चाई को, उस वास्तविक को जाने कि वो इस जीवन में उस उद्धार को प्राप्त कर सके। कौन है वो उद्धार करता, कैसे उनको उद्धार मिलेगा, और इस संघर्ष में वो बहुत जगह जगह घूमते रहे, परेशान रहे, लेकिन बाद में वो यीशु के पास आ गए और यीशु ने उनको उद्धार दिया। मुझे नहीं मालूम आप किस श्रेणी में है, मुझे नहीं मालूम आप किस श्रेणी में, यह आज मुझे और आपको सोचने का अवसर होगा कि हम अपने आप पर विचार करें, क्या मैं पहली श्रेणी में हूं, क्या मैं दूसरी श्रेणी में हूं, क्या मैं तीसरी श्रेणी में हूं। लेकिन जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, बिना विश्वास के हम मसीह नहीं बनते, बिना विश्वास के हम यीशु मसीह के अनुयायी नहीं बनते, बिना विश्वास के हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ता, बिना विश्वास के हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, हम बिना विश्वास के पापों की क्षमा को नहीं प्राप्त करते। विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही अधिक अनिवार्य है, यह हमारे मसीह जीवन का आधार है, यह हमारे मसीह जीवन का आधार। और यदि अभी तक हमने विश्वास को नहीं समझा है, या विश्वास हमारे जीवन का आधार नहीं बना है, या हमने विश्वास 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 को सुबह से शाम तक रटते तो हैं, हम कहते तो हम विश्वासी हैं, हम कहते तो हम विश्वासी मंडली में आते हैं, हम कहते तो हमने विश्वास किया है, हम कहते तो हमने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई को, उसके अर्थ को यदि अभी तक हमने नहीं जाना है तो हम भ्रमित हैं, हम भ्रमित हैं। और इसलिए आज और आने वाले पाक को जो मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं वो विश्वास संबंधित है। मेरे साथ कृपया निकालिए इब्रानियों उसका 11। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाना चाहूंगा, क्यों इब्रानियों की पत्री लिखी गई, क्यों इस पत्री को लिखा गया। जिस लेखक ने, लोगों का अलग अलग विचार है, कुछ पौलुस कहते हैं, क्यों को कहते हैं, कुछ कहते हैं बर्नबास ने उसको लिखा, ज्ञात है। लेकिन फिर भी जिस प्रभु के सेवक ने इस पत्री को लिखा और जो इस बाइबल में, इस भाग में आगे, वो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हुए देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी? कि यहूदीवाद में, जुडाइज्म के मध्य में, यहूदीवाद के मध्य में लोग कुछ मसीह हो रहे थे और वो विश्वास करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन उसी में कुछ ऐसे यहूदी लोग भी थे जो विश्वास की बात तो करते थे लेकिन विश्वास के अर्थ को नहीं समझते थे। विश्वास की बात तो करते थे लेकिन विश्वास के अर्थ को नहीं समझते थे। और आज हम में से कितने लोग हैं जो विश्वास की बात तो करते हैं लेकिन विश्वास के अर्थ को नहीं समझते। और जब यह ऐसी परिस्थिति वहां पर थी तो लेखक उन सारी बातों का और उसके साथ साथ ये क्या कर रहे थे, ये अभी भी उन कर्मों पर विचार कर रहे थे कि जो यहूदी से होकर इधर तो आ गए लेकिन फिर भी इनका ध्यान कर्म पे था और व्यवस्था के पालन पे था। कर्म बुरा नहीं है लेकिन बाइबल में कर्म प्रधान नहीं है, विश्वास प्रधान है। और विश्वास और कर्म एक तराजू के एक दो पलड़े के समान है। लेकिन वहां पर समस्या ये थी कि जब लोग बातचीत करते थे तो उनके ध्यान में केवल व्यवस्था थी, केवल काम थे व्यवस्था के अनुसार जो कर रहे थे। और तब इब्रानियों का लेखक आगे चल के उनको सारी बातों को बताते हुए तब विश्वास के बारे में बात करता है। और इसलिए जब हम 10वें अध्याय में आते हैं तो 10वें अध्याय के 32 पद से जब हम पढ़ते हैं, 32 पढ़ते पढ़ते हुए कुछ कुछ बातों को बताता है। वो कहता है अपना भरोसा ना छोड़ो, लेकिन दो बातें वो कह रहा है खासतौर से 10वें अध्याय के अंतिम पदों में, 11 अध्याय के 3 पद तक मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं होगा। हम अभी गीत गाते यीशु आ यीशु आ यीशु आ, अब थोड़ी देर में आने वाला आएगा और विलंब नहीं करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वो पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास रखते हैं। हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, परंतु हम उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए विश्वास करते हैं। तब वो पहले पद में क्या कहता है, पहले पद से लेकर 3 पद तक, विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई जो कुछ देखने में आता है, वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। जब हम 37 और 38 पद में आते हैं, दो प्रतिज्ञा हैं। वो प्रतिज्ञा क्या है? पहली प्रतिज्ञा है कि आने वाला आएगा, अर्थात हमारी दृष्टि हमारी निर्भरता उस यीशु पर है जो न केवल संसार में मेरे और आपके पापों के लिए मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर उठा लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा देखो मैं फिर से आऊंगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंतिम शब्द जो है वो ये प्रार्थना के साथ है, प्रभु यीशु तू आ, प्रभु यीशु तू आ। सो पहली प्रतिज्ञा वो आने वाला आएगा, हमारी दृष्टि उस यीशु की ओर है जिसने प्रतिज्ञा की है वो आएगा और मेरे प्रियो जो विश्वास करते हैं उनको वो अपने साथ ले जाएगा। दूसरी बात, न केवल वो प्रतिज्ञा जो आने वाला आएगा, लेकिन कहता है मेरा धर्मी जन, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है उसका धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वो पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हटे, यदि वो इसका अंकार करे, यदि वो पीछे हट जाए तो उसका मन परमेश्वर का प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रियो, विश्वास मसीह जीवन का एक एंकर है, लंगर है, और वो लंगर मनुष्य को थामता है, लंगर थामता है। आपने जहाजों में शिप में कई जगह देखा होगा, अब तो दूसरी तरह की शिप बनने लगे, लेकिन पहले जो बड़ी बड़ी नाव चलते थे, शिप चलते थे। अभी पिछले दिनों में मुझे असल में कोई मौका मिला जाने का और हमने वहां पर फिर उस बात को देखा, और उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से होते हैं और रस्से में कांटेदार बना रहता है, उसको एंकर बोलते हैं। और जब जैसे जहाज शिप किनारे आते हैं तो लंगर को फेंकते हैं और वो बालों में धर जाते हैं पूरी तरह से, वो हिलने से हवा आती है, तूफान आता है, पानी चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन उस जहाज को गिरने से डूबने से बचाता है एंकर। मसीह जीवन में विश्वास, मसीह विश्वासी का एंकर है, लंगर है। और इसलिए और वही विश्वास के द्वारा एक धर्मी जन जीवित रहता है। लेकिन वो क्या कह रहा है 39 पद में, हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं चाहे कैसी परिस्थिति आए, लेकिन पर उनमें से हैं जो प्राणों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि एक दिन आने वाला आएगा, यीशु आएगा और मेरा और आपका न्याय करेगा। और उस न्याय में अगर मैंने और आपने सच्चा विश्वास नहीं किया है तो हम क्या होंगे, नाश होंगे। और तब उसके बाद आगे चल करके वो विश्वास के बारे में कुछ बात करता है। आखिर विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, यहां पर वो कहता है ये एक काल्पनिक धारणा नहीं है, एक मन की सोची एक विचार नहीं है। विश्वास मैंने बैठे बैठे कुछ सोच लिया ये हो गया, ये काल्पनिक विचार या धारणा नहीं है। ये एकमात्र मिथ्या नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा हम संसार में अपना प्रभाव जता सकें, नहीं 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 ये ऐसा नहीं है। विश्वास परमेश्वर का वरदान है, विश्वास परमेश्वर का वरदान है। फेथ इज गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वरदान है। और यहां पर क्या कह रहा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आखिर क्या है, ये एक ऐसा वरदान है अतः एक पापी के मस्तिष्क हृदय एवं समाज का स्वैच्छिक एवं गंभीर परिवर्तन है जो उसे उसके अर्थात यीशु के एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु की ओर फेर देता है। यह एक परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क से, उसके हृदय से और समझ से गंभीरता के साथ परिवर्तित होकर उसको यीशु की ओर फेर देता है। मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके जीवन में ये गंभीरता नहीं है मसीह जीवन के लिए, मसीह विश्वास के लिए, यदि ये मस्तिष्क में, हृदय में गहराई के साथ परिवर्तन नहीं है तो ये विश्वास हमारा अधूरा है। हम विश्वास विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास को समझते नहीं। और इसलिए फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये परमेश्वर का वरदान है अतः एक पापी के मस्तिष्क हृदय एवं समझ का स्वैच्छिक एवं गंभीर परिवर्तन है जो उसे उसके एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु की ओर फेर देता है। इस विश्वास का पात्र यीशु मसीह है, इस विश्वास का पात्र यीशु मसीह है और इस विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। इस विश्वास का पात्र यीशु मसीह है और विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। और मुझे और आपको इसको बहुत अच्छी रीति जानना चाहिए, यह सच है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है, ये काम को कामों के कारण नहीं, विश्वास ही से हमारा उद्धार हुआ है। यहां पर वो कहता है पहले पद में, विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहां पर आप लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, जो पीछे बैठे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जो आप पीछे बैठे हुए हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं। इस कमरे में एक घड़ी टंगी हुई है, इस कमरे में एक घड़ी टंगी हुई है, कितने लोग पीछे बैठे देख रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि कैसी घड़ी है, किस प्रकार की घड़ी है, आप इसकी व्याख्या कीजिए, क्या आप कर सकेंगे? कर सकेंगे? आप सोच लीजिए, दोनों समूह में फर्क देख लीजिए। पीछे बैठ रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं है, जब उन्होंने देखा नहीं तो उसका वर्णन नहीं कर सके, लेकिन जो देख रहा है वो देखकर जान रहा है क्या है ये, और उसकी व्याख्या वो तो दो मिनट में उन्होंने करी। अगर उनको एक पेज दे दिया जाए तो शायद वो और लंबे रीति से कर सकते थे। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है, यही परमेश्वर का वचन। विश्वास एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, विश्वास एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। और जब तक उस अनुभव में हम ना पहुंच जाए, और वो अनुभव केवल शारीरिक चंगाई का नहीं है, केवल बीमारी से छुटकारा का नहीं है, केवल कुछ स्थिति की बदल जाने का नहीं है, कुछ और परिवर्तित हो जाने का नहीं है, कुछ अच्छे समुदाय समाज में जुड़ जाने का नहीं है, कुछ हमारी स्वीकृति का हो जाने का नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस ये अनुभव है जो पापों की क्षमा और उद्धार का एक्सपीरियंस है। और मेरे प्रियो, कितने ऐसे होंगे अगर उनको यहां खड़ा करके साक्षी दी जाए, क्योंकि उन्होंने उस उद्धार के अनुभव को पाया नहीं, वो भी इसी प्रकार से रहेंगे जैसे पीछे लोग बैठे हुए थे। दोनों में फर्क है, यहां पर वहां पर दोनों में फर्क है, क्योंकि एक है जिसने देख लिया है, जान लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, इसलिए वो उसका वर्णन उस रीति से कर सकता है। विश्वास एक अनुभव है, और हमें इस बात को समझना है, हमें अपने जीवन में बात को जानना है। और इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हुए मैं एक और विचार को आपके सामने लाना चाहता हूं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचते हुए एक और विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये विचार ये है, क्या मेरा और आपका विश्वास सही विश्वास है? तीन प्रश्न है जिसको सोचना होगा पूरे इस आराधना में। क्या मेरा और आपका विश्वास सही विश्वास है? क्या इसका आरंभ और शुरुआत सही रीति से वचन आधारित परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ है? क्या इसका आरंभ सही रीति से वचन आधारित परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ है? क्या मेरा विवेक, हृदय, मन, समझ इस विश्वास की मुझ में स्वयं में साक्षी देता है? क्या मेरा विवेक और हृदय, मन, समझ इस विश्वास की मुझे स्वयं साक्षी देता है? ये तीन बातें जिसको मुझे और आपको सोचना है। हर विश्वासी के लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमने इस बात को देखा। क्या वो कहना चाह रहा है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 पद, रोमियो 10 अध्याय 17 पद, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। कौन सा दिन था, कौन सी घड़ी थी, कौन सा समय था जब आपने, मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और वचन ने मेरे जीवन में काम करना आरंभ कर दिया? पुराने नियम में यशाया कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो जिससे तुम जीवित रह सको। यशाया उसका 55 अध्याय 3 पद, यशाया 55:3। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो जिससे तुम जीवित रह सको। कान लगाओ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह वचन मेरे और आपको क्या सिखाता है? यह वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है? प्रेरित काम उसका 17 अध्याय 2-3 पदों को हम जरूर पढ़ेंगे। प्रेरित काम उसका 17 अध्याय और उसके 29 और 30 पद में इस तरह से लूका लिखते हुए कहता है, इस प्रकार परमेश्वर की संतान होकर हमें कदापि नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोने, चांदी अथवा पृथ्वी के किसी कारीगर के समान है जो मनुष्य की कला और कल्पना से गढ़ा हुआ है। परमेश्वर कोई मूर्ति और कारीगर नहीं है। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश मूर्ति प्रधान देश है, और हमें से बहुत सारे लोग, यहां तक कि जो मसीह भी हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, दुआ करते थे, तब भी हमारे घर में बहुत सारे कैलेंडर टंगे रहते थे। कहीं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है, कहीं वो मां की गोद में खेल रहा है, कहीं ताज पहने में बैठा हुआ है, कहीं कुछ इस तरह से, तरह तरह के कैलेंडर हमारे घर में टंगे रहते थे। जबकि परमेश्वर का रूप इस तरह का नहीं है, लेकिन हमने भी बना रखा था, हम भी उन्हीं के समान थे जो संसार में, हम उनसे अलग नहीं थे, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी समझ उनसे अलग नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह पर को हमने पा लिया या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, हमने उन कैलेंडर को हटा दिया। कैलेंडर को तो हटाना था आसान है, लेकिन क्या वो मूर्ति हमारे हृदय से हट गई? और पौलुस क्या कहता है? इसीलिए कहता है कि वो इसमें नहीं रहता, इसलिए अज्ञानता के समों की उपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्य को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें।
पश्चाताप करें। पहली बात, विश्वास का आरंभ परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद वो ऐसी प्रतिक्रिया को मन में उत्पन्न करता है कि हम अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को देखते हैं, जो वास्तविक स्थिति पाप की स्थिति है। वो वास्तविक स्थिति कि हमने पाप पे जन्म लिया और प्रत्येक प्राणी पापी है और जो पाप करेगा निश्चय मर जाएगा और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम उस बात को समझते हैं कि हम पापी हैं और पाप के बाद हम अपना पश्चाताप करते हैं, उड़ाओ पुत्र चला गया। लेकिन क्या लिखा हुआ है, जब वो अपने आपे में आ जा अपने होश में आया, उसके होश ने उसको क्या दिखा दिया, उसके होश ने दिखा दिया मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं। और मेरे प्रियो, इस होश ने उसको पश्चाताप तक पहुंचा दिया। अगर वो अपनी दशा को ना देखता, वो मेरे प्रियो किसी प्रकार से वो पश्चाताप नहीं करता और लौटकर अपने पिता के पास ना आता। एक पश्चातापी मनुष्य के हृदय में कायरता उत्पन्न करके वो पश्चाताप पे ले आता है, ना केवल ये लेकिन 20 अध्याय में पौलुस क्या कह रहा है, पहले कह रहा है पश्चाताप करो और तब 20 अध्याय में आगे चल के वो कहता है 21 पद, मैं यहूदी तथा यहूनी दोनों को ही दृढ़ता पूर्वक शासी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्या कह रहा है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो, उस यीशु पर जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो केवल शिक्षा देने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया, वो केवल एक आश्रय कम करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया, वो केवल एक नया समुदाय बनाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया, वो केवल कोई एक नई जाति को करने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया, वो केवल और एक स्थानीय राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो मेरे और आपको पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में क्रूस पर बलिदान होने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए, कीमत चुकाने के लिए संसार में आया, ताकि हम उस पर विश्वास करके बच सके। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन आगे 36 पद में, जो उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो नाश हो जाता है। यूहन्ना 3 अध्याय का 36 पद, जो उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो नाश कर। चर्च में आना, रजिस्टर में नाम लिख लेना, बपतिस्मा ले लेना, ये सारी बाहरी क्रियाएं करना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन अगर ये सब कुछ तो कर लिया लेकिन पश्चाताप नहीं करा, यदि मन नहीं फिराया, यदि उद्धार का अनुभव नहीं किया, वो सब कुछ बेकार है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सोचें, समझें, जांचें कि हम क्या चाहते हैं। कह रहा है अब, ये कह रहा है क्या, वो कहता मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्या मतलब है मन फिराने का, मन फिराना मतलब यह है कि हम आंखों से शो की कार क्यों देखते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, जीवन को समर्पित करते हैं। फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या मतलब है मन फिराने का, मन फिराने का मतलब यह है हम आंखों से उसके कार्य को देखते हैं, उस कार्य को जो यीशु पे यीशु ने मेरे और आपके लिए किया। हम मस्तिष्क में उस चीज को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या है, उद्धार क्या है, उद्धार के अर्थ क्या है, उसको हम समझते हैं। उसके बाद हृदय से ग्रहण करते हैं, केवल ऊपरी हवा से नहीं लेकिन हृदय से तो ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं। और इसीलिए रोमी का लेखक कहता है, जो मुंह से अंगीकार करे, मन से ग्रहण किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, और तब उसके बाद जीवन को हम समर्पित कर देते हैं। क्यों, हम समझ गए हैं पाप क्या है, हम समझ गए हैं पापी के जीवन का परिणाम क्या है, हम समझ गए हैं उद्धार क्या है, हम समझ गए हैं छुटकारा क्या है, हम समझ गए हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, हम समझ गए हैं। मेरे प्रियो, ये मस्तिष्क के द्वारा परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझते, हम मिल तो जाते हैं लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हमारे उठते बैठने में, बोलचाल में, कपड़े पहनने में, वो पुरानी चीजों को जो लिए चले आ रहे हैं उन्हीं में हम चलते चले आते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जैसे हमें समझना चाहिए हमने समझा नहीं है। हम मस्तिष्क से समझते हैं, जब मस्ती समझते हैं और उसके बाद हम हृदय को ग्रहण करते हैं, हृदय से ग्रहण, ओ ये सत्य है, ये जीवन है, यही एक मार्ग है, यही सच्चाई है। इस दुनिया में बहुत सारे तो मार्ग दिखाई देते हैं, लेकिन केवल यीशु ही मार्ग है। हम समझ जाते हैं और तब हमारा जीवन गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास नहीं होता। यहां पर है तो विश्वासी विश्वासियों की चले आ रहे, जैसे कहीं और चले गए अपने मित्रों के बीच में, गांव के बीच में कहीं और चले गए, हम उन्हीं की तरफ गए। क्या करें, हम तो मजबूर हैं, चाहते तो हैं, प्रभु तो हमारे जीवन को जानता है कि हम उसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह अभी तक हम समझे नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए इब्रानियों का उसका 10 अध्याय 29 पद क्या है कि हम विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं, ना केवल लेकिन हम हृदय से ग्रहण करते हैं। और जब हमने ग्रहण कर लिया, अगर हृदय में यीशु मसीह को बैठा लिया तो फिर सारी चीज निकल गई। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर और दूसरी चीजों को भी साथ लेकर हृदय में नहीं चल सकते। भैया एक व्यक्ति अगर अपने हृदय में अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को बैठा के चलेगा तो क्या होगा? अगर एक पति अपने हृदय में दूसरी पत्नी को बैठा के चलेगा और पति पति की जगह दूसरे को बैठा के, क्या होगा? मैं प्रेम करता हूं प्रेम करती हूं तो कहते रहेंगे, लेकिन वास्तव तो क्या है, हृदय में कई जना बैठे हुए हैं। हम केवल परमेश्वर को बैठा सकते हैं और परमेश्वर के अलावा दूसरों को नहीं बैठा सकते। अगर हमने केवल यीशु को ग्रहण किया है तो दूसरी चीज बाहर निकलनी है। अगर हम दूसरे को स्थान देते हैं तो इसका मतलब हमारा प्रेम हमारा समर्पण सही नहीं है। हम जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पिता पति को पुरुष को धोखा दे सकती है, जिस प्रकार से एक पुरुष अपनी पत्नी अपनी स्त्री को धोखा दे सकता है, उसी प्रकार से हम भी अपने परमेश्वर के साथ धोखे का जीवन व्यतीत करते हैं। हमें समझना है और हमें जांचना है आपको, और इसलिए वो कहता है हम हृदय से ग्रहण, और तब हम मुंह से अंगीकार करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था विवेक, मैं पत्नी से बहुत प्यार करता हूं पर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत अच्छी लगती है। फोन आया जल्दी से, कोई आया किसी ने बात करी, अरे ठीक है कहां जा रहे हैं कहां जा रहे हैं, अभी आ रहा हूं, अभी किसका फोन है, किसी का, अभी मैं ऑफिस से आया, फोन लेके चले गए। तुझसे प्यार करता हूं बहुत प्यार करता हूं, तुझी को चाहता हूं, लेकिन क्या है, लगा तो कहीं और है। मेरे प्रियो ये मसीह जीवन नहीं है, ये मसीह जीवन नहीं है, ये दुख की बात है, और मुझे और आपको समझना है, मुझे और आपको समझने बात को। इसीलिए यहां पर वो कहता है जो क्यों ये कह रहा है परमेश्वर का वचन इब्रानियों का लेखक जो अभी हमने पढ़ा 11वें अध्याय में, कि क्या है विश्वास, तो आशा की वस्तुओं का निश्चय है, वो बातें जो हमने अभी देखी नहीं है, लेकिन हमारी निश्चयता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, परंतु क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, प्रमाण है। हमने उद्धार को देखा नहीं, लेकिन हम यीशु को जानते हैं, अभी मैं आगे चलकर और एक्सप्लेन करूंगा, हम उसको जानते हैं जो इस बात को दर्शा रहा है यीशु कौन है, हम उसको देख रहे हैं यीशु कौन है, हम देख रहे हैं उसको यीशु कौन है, इसलिए हम उस पर उन बातों पर विश्वास करते हैं। दूसरा पद, इसी कारण इब्रानियों 11:2, इसी कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी। कौन से प्राचीन लोग? सृष्टि के बाद से लेकर जितने गवाह बनते गए, चाहे वो हनोक था, चाहे वो हाबिल था, चाहे कौन था, नू था, कितने लोग थे जो बनते गए? नू 120 साल तक प्रचार करता रहा, लोग उसके कार्य को देख रहे हैं कि वो कुछ बनाने में लगा पड़ा है, एक बड़ी नाव तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने उसे कहा, उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास करके उसने आज्ञा मानी और आज्ञा मानकर वो लग गया। लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, नूह तू ये क्या कर रहा है, भैया सावधान हो जाओ, परमेश्वर ने कहा है पश्चाताप कर लो, फिर जाओ, उन चीजों छोड़ दो, उस परमेश्वर की ओर आ जाओ, लौट जाओ, नहीं तो कुछ समय बाद बाढ़ आएगी, परमेश्वर नाश करेगा और तुम नहीं बचने पाओगे, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा, इस नाव पे सवार होगा, वही बचने पाएगा। उस समय से प्रभु यीशु मसीह का चित्रण दे दिया गया था कि जो नाव पे प्रवेश करेगा वही बचने पाएगा। और मेरे प्रियो, हमारे छुटकारे की नाव, उद्धार की नाव प्रभु यीशु मसीह है, हमारे उद्धार की नाव, छुटकार की नाव यीशु मसीह है। उस समय 120 साल तक प्रचार किया गया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके मन को ठोक दिया। यह आरंभ से गवाही वो कह रहा है कि इस कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई है परमेश्वर के वचन में। अरे तुम नूह को देखो, हाबिल को देखो, करीब 24 बार इस स्थल में, इन पदों में विश्वास के बारे में आया है, और 19 बार विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा इन स्थलों में आया है। अर्थात 19 साक्षी ऐसे उसके बाद और भी जोड़ दिया गया। ऐसी है मेरे प्रियो, जिन्होंने देखा है उन प्राचीन काल से, उनकी गवाही मेरे प्रियो, ना केवल बाइबल में गवाही है लेकिन संसार में कितने लोगों की गवाहियों को हम सुनते हैं, प्रभु के सेवकों की गवाही को सुनते हैं जो शायद हमसे पहले आए, कितनी गवाही को आज भी अपने इर्द गिर्द सुनते हैं जो आज भी हैं और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बनकर संघर्ष करते हुए आगे जीवन को व्यतीत करते चले आ रहे हैं। जब हमने बाराबंकी में सेवा को आरंभ किया, उसके कुछ समय बाद हमने सुल्तानपुर में सुसमाचार प्रचार का कार्य आरंभ किया, और वहां हमारे संपर्क में एक परिवार आ गया। एक छोटी छोटी जवान बच्चियां थी उस घर में। एक बहन जिसने सुसमाचार पर विश्वास किया था वो बाइबल लेकर आई और उस घर में आकर कहा कि इस बाइबल के लिए थैला सिल दीजिए, थैला बना दीजिए क्योंकि सुनना जाए। तो बच्चियों ने पूछा इस बाइबल ये है कि कौन सी पुस्तक है। तब उसने बात साक्षी दी उस बच्चे ने, उस बहन ने, कि ये बाइबल है और बाइबल में क्या है बाइबल। तब उसे सब कुछ बताया, अपने जीवन के बारे में बताया, और तब उसके बाद उन बच्चियों के अंदर और जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और जिज्ञासा के बाद जब ये हुआ तो वो प्रभु के बारे में जानने लगी, और इन बच्चियों ने विश्वास किया, उन बच्चों ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद ये आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे फिर उनके पिता ने, बहुत संपन्न परिवार उस गांव में, बहुत अच्छा धनी परिवार, उनके घर में बहुत बड़ा घर, किनारे एक मंदिर बना हुआ, मंदिर में मूर्तियां लगी हुई थी, सब कुछ लगा था, और ये सब कुछ उन्होंने करा, और उसके बाद विश्वास में आकर विश्वास में पढ़ने लगे। संघर्ष शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। हम लोग भी उस एक दिन थे, हमने वहां पर आंटी और हमारे साथ कुछ भाई लोग थे वहां पर 16 बपतिस्मे में एक दिन में सुबह हमने वहां पर गांव में रहट में दिए, और बैप्टिज्म के बाद जैसे ही आए गांव में हल्ला मच गया, यहाँ ये हो रहा, ये हो रहा, और फिर विरोध में लोग आ गए, विरोध में लोग आ गए, पुलिस भी आ गई, लंबी कहानी है, और पेपर में भी निकला, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं उस परिवार के बारे में बोलना चाहता हूं, इतने सब कुछ संघर्ष के बाद वो पूरा परिवार विश्वास बना रहा, बहुत कठिन था उनके लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको विश्वास में बना के रखा, विश्वास में बना रखा। बहुत संघर्ष था, पूरा गांव विरोध में था, सब कुछ था। आज भी कितने ऐसे लोगों की साक्षी हैं हमारे सामने, हमारे देश में, हमारे आसपास, दूसरे देशों में हम सुनते और पढ़ते और चलते चले आते हैं। मेरे प्रियो, कह रहा है इस विश्वास के कारण क्या हुआ, क्यों उन्होंने उस वस्तु पर ध्यान दिया। तीसरा पद अब यहां पर कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है विश्वास के बारे में। सो ये तीन पद जो मुख्य पद है, जो पूरे इस 11 अध्याय के आधार पद है, जो 10 अध्याय को और इस 11 अध्याय को जोड़ते हैं, ये तीन पद मुख्य आधार पद हैं। तब तीसरे पद में क्या कहता है, विश्वास से हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि रचना की गई। विश्वास से हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये वचन ने हमें इस बात को दर्शाया है और हम जानते हैं ये सारी सृष्टि जिसको हम देख रहे हैं सारी हिस्ट्री। और इसीलिए पौलुस रोमियो में लिखते हुए, रोमियो उसके पहले अध्याय में लिखता है, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद, यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस बात को कहता है, रोमियो 1 अध्याय उसका भी, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वर की उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। ओ ये परमेश्वर ने अपने वचन से संसार की सृष्टि की है, ये आरंभ से दिखाई दे रहे हैं, आरंभ से दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, कुछ बातें हम देख सकते हैं, हम यहां देख सकते हैं कुछ चीजों को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो संसार के कोने में हैं। हम सुनते चले आए हैं कि ऐसी भी देश है जहां पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता, हमने नहीं देखा, लेकिन यदि प्रभु आपको वहां पहुंचाए तो अपने आप देख लेंगे। पिछले दिनों में कुछ बातों का हमने सुना, आंटी किसी विषय को पढ़ाती थी अपने स्कूल में रहते हुए, लेकिन पढ़ाती थी, पढ़ के पढ़ाती थी, लेकिन प्रभु ने एक दिन मौका दिया कि वहां हम गए और वहां जाकर विदेश में जाकर उस स्थान को देखा, उस जगह देखा जो अब न केवल वैसा ज्ञान था लेकिन उन्होंने देख लिया उस चीज को, अब वो उनके लिए और सार्थक हो गया। मेरे प्रिय सृष्टि को तो हम देख रहे हैं, इस सृष्टि को परमेश्वर ने अपने मुंह से अपने वचन से इसको सृजा है, इसलिए जिसको हम देख रहे हैं हम उसका इंकार नहीं कर सकते, हम उसका इंकार। और वो कह रहा है कि हम जानते हैं यह सृष्टि वचन के द्वारा हुई, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा की, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वचन है। और हम देखते हैं इस वचन को कि और वचन देदारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। वचन देदारी हुआ, वचन से उसने सृष्टि की, वचन इस संसार में आ गया, वही वचन को हम सुनते हैं और उसी वचन को सुनने के बाद इस सृष्टि को देखते हैं कि उस सृष्टि उस परमेश्वर के द्वारा की, उस वचन को सुनते हैं जो वचन उसने कहा, उसके बाद वो वचन जो उद्धार का वचन है, और तब हमारी समझ परिवर्तित होती है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारे जीवन परिवर्तित होता है, और तब हम समर्पित करके उस पर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है ये वचन उस सृष्टि के द्वारा। संसार में बहुत सारी गवाही हैं, जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन परमेश्वर के पास हम जाएंगे और उसको देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बेगवाह नहीं छोड़ा, उस स्वर्ग को, उस स्वर्ग की भी गवाही परमेश्वर ने दे दी। कैसे दे दी? जब स्तफन उसका वध किया जा रहा था, स्तुवन परमेश्वर की साक्षी दे रहा था, प्रेरित काम में निकाली, प्रेरित काम उसका सातवां अध्याय, और यहां पर हम स्तुवन उसके बात के बारे में देखते हैं किस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन की साक्षी दे रहा है, और करते हुए तब वो आगे बढ़ता है 54 पद से। जब उन्होंने सुना तो तिलमला उठे और स्तुवन उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर की ओर एक तक देखा, स्वर की ओर एक तक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखा, तब उसने कहा देखो मैं स्वर को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखता हूं। ये एकमात्र ऐसी साक्षी है इस स्तुफनुस के द्वारा नए नियम में, जिससे अपनी मृत्यु से पहले उस स्वर्ग के दर्शन को प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, और उसने देखकर उस साक्षी को मेरे और आप तक पहुंचा दिया ताकि हम उस साक्षी पर विश्वास करके देख सके वो स्वर्ग कैसा है, जहां पर हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, इकलौता प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के पास खड़ा हुआ। कितना अद्भुत है, यह है विश्वास, यह है विश्वास। हम हवा में बात नहीं करते, हम मिथ्या में नहीं चलते, हम धारणा को लेकर नहीं चलते, हम धारणा को लेकर नहीं चलते, किसी ऐसी झूठी या मनगढ़ंत कहानी को बैठा कर नहीं करते। आज संसार में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी बनती है, बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी बनती है, और लोग उनके पीछे पीछे चले आते हैं, पीछे चले आते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, परमेश्वर के वचन में आते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है और ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और अपनी बात को कहकर बदल जाए। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य झूठ बोल सकता है, मनुष्य मिथ्या गढ़ सकता है, मनुष्य कहानी बना सकता है, मनुष्य बहुत सारी बातों में अपने लोगों को अपने उठी सकता है, मनुष्य बहुत कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। मेरे पियो, उसका चरित्र अलग है, उसकी विशेषता अलग है, उसका गुण अलग है, इसीलिए वो सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सर्वपवित्र, सर्वप्रेमी परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है, और मेरे प्रियो उसी परमेश्वर पर मुझे आप पर विश्वास करना है, और इसलिए जब इस बात को बात करते हैं तो कहता है कि ये ऐसा है, कह रहा है समस्त सृष्टि के द्वारा ऐसी की गई जो देखने में आता है, वो देखने दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। इस सृष्टि को कैसे बनाया गया? मेरे हाथ में, मैं अक्सर बच्चों के साथ जब बात करता हूं और बात करते हुए जब मुझे मजा आता है, यूथ में के साथ जब मैं बात करता हूं तो मैं उनके सामने घड़ी फेंक देता हूं और कहता हूं ये घड़ी, अरे देखो ये तो अभी नहीं थी, अच्छा बन गई अपने आप, अरे वाह, अच्छा एक वहां से चल के आया, एक वहां से चल के आया, एक वहां से अपने आप जुड़ गई, मैंने उठा लिया, मैंने बना दिया। क्या ऐसा ही है? मेरे प्रियो, संसार की थ्योरी क्या है, संसार के शिक्षा सिद्धांत क्या है? एक बात को देखो, कुछ नहीं से कुछ नहीं बनाया जाता, सुन लीजिए, ज्ञान सुनिए, कुछ नहीं से कुछ नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर ही है जो कुछ नहीं से कुछ बनाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, समझने की बात है, संसार में कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर ही है जो कुछ नहीं से कुछ बनाता है। इसलिए कुछ नहीं था उससे संसार की सृष्टि की, यह परमेश्वर का योगदान है, यह परमेश्वर है, यह परमेश्वर। और इसीलिए वो यहां कहता है कि वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उससे उसने कुछ बना दिया, अर्थात संसार की सृष्टि कर दी। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, उसी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया, वही मनुष्य मेरे और आपके लिए उसने इस संसार में रहकर एक साधारण जीवन व्यतीत किया, निष्पाप रहा, उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उस पाप परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो निंदा सही, वो अपमान सहा, वो पीड़ा सही, वो दोष सहा, वो सब कुछ सहा, यहां तक कि वो पीड़ा दर्द को सहा, थूक सहा, बुरी बुरी बातें उसके सही, बहुत कुछ सहा, यहां तक कि उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो यहां तक ही आज्ञा कर रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है, और उसी प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसी प्रभु के। क्यों? हम उसके मनुष्य होने को समझते हैं, हम उसकी सेवा को समझते हैं, हम उसके सुसमाचार को समझते हैं, हम उसके बलिदान को समझते हैं, हम उसके स्वर्ग के जाने को समझते हैं, और हम उसके पुनः आगमन को, दोबारा आने को भी समझते हैं, और इसलिए हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। और ये विश्वास मस्तिष्क से आरंभ होता है, सोच से आरंभ होता है, हृदय से ग्रहण किया जाता है, और यही मुझे और आपको सच्चे पश्चाताप में ले आता है। मैंने उदाहरण दिया उड़ाऊ पुत्र का, फिर से लाना चाहूंगा आपको वापस। जब उड़ाऊ पुत्र चला गया, उस दिन बहुत मस्ती में था दोस्तों के साथ, लेकिन जब उसकी परिस्थिति बदल गई तो क्या होने लगा? सोचने लगा, सोचने लगा, मस्तिष्क काम करने लगा, सोच रहा है क्यों ऐसा हो गया, मैंने क्या करा, मैं तो घर में वहां था, वहां तो अच्छे अच्छे सेवक थे, वो सेवक मेरी देखभाल करते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, अरे मैं तो ठाट से रह रहा था, अपने पिता के राज में कितना सुंदर था, कितना अच्छा था, मेरा मान था, सम्मान था। सोचने लगा कितना अधिक मैं और आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपनी घटियों के बारे में सोचते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, अपनी सारी दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं, अपने रिश्तों संबंधों के बारे में सोचते हैं, सोचते हैं बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन कितना अधिक अपने व्यक्तिगत जीवन में इस पाप के बारे में सोचते हैं जो पाप मुझे और आपको नरक में धकेल रहा है। अगर ये नहीं तो सच्चा पश्चाताप नहीं, और अगर सच्चा पश्चाताप नहीं है तो हम मन नहीं प्रार्थते, और अगर मन नहीं प्राया तो परमेश्वर के पास आ नहीं सकते, तो परमेश्वर के पास नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। और इसलिए अवश्य है, अवश्य है, प्रभु का धन्यवाद हो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। लेकिन वचन कहता है यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे, उस सारी वस्तुओं में अच्छी संगति भी होती है, आनंद भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, अच्छी बहुत सारी मित्रता भी होती है, अच्छा समाज भी होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, सब कुछ प्राप्त करे, लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पापों की क्षमा, पश्चाताप के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करना और प्रभु के राज में प्रवेश करना। मुझे याद है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत गर्व करता था। अरे कोई भी मुझसे बात करता था तो मैं तरह तरह के आर्गुमेंट देता था बहुत। लेकिन जिस दिन एक भाई ने मेरे से बात करी, प्रभु का धन्यवाद हो, अगर वो दिन मेरे जीवन में नहीं आता, मैं सही परिवार में पैदा हुआ था, रीति विधि पूरा कर रहा था, बहुत सारा ज्ञान भी था, शुरू से कुछ कुछ कोशिश में था, लेकिन मैं नाश हो रहा था। अगर वो दिन नहीं आता जो सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करना, आज यहां नहीं खड़ा पाता। मेरे प्रियो, सोचने के लिए मुझे और आपको सोचना है। और वो कहता है कि वो जो दिखाई देती हैं वाली वस्तुएं नहीं जिससे वो बनाया गया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो मेरे और आपके जीवन को जानता है, वो मेरे आपके मन को जानता है। सो इसलिए मुझे और आपको जाना विश्वास क्या है। मैंने आरंभ किया था कि सचमुच वो आने वाला आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। संसार की बदल परिस्थिति बदल सकती है, आज हमारे प्रदेश की परिस्थिति बदल रही है, हम नहीं जानते देश की परिस्थिति क्या होगी, संसार की परिस्थिति बदल, हम नहीं जानते। लेकिन हम एक बात को जानते हैं, आकाश और पृथ्वी तो टल सकता है लेकिन प्रभु के वचन बिना पूरे हुए एकमात्र बिंदु भी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको देखना है कि मेरा और आपका विश्वास कैसा है, मेरा और आपका विश्वास कैसा है। क्या वो एक सच्चा विश्वास है, वो विश्वास जो विश्वास जिसकी नींव परमेश्वर का वचन है, जिसका आधार परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास जो मैंने विश्वास किया है, लेकिन विश्वास जो दिन पर दिन बढ़ रहा है। जब परमेश्वर का वचन बीज हमारे जीवन बोयाता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। क्या वो बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा तो क्या है? क्या वो विश्वास मेरे जीवन को बदल रहा है, मेरी स्थिति को बदल रहा है? स्थिति केवल भौतिक स्थिति को नहीं, स्थिति केवल सांसारिक स्थिति को नहीं, लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति को बदल रहा है। जो मैं पहले करता था, मैं गीत गाते हैं बच्चों के बीच में जवान में, थिंग्स आई टू डू, चीजें मैं जो करता था अब मैं नहीं करता हूं, जगह मैं जो जाता था अब मैं नहीं जाता हूं, जो गीत में गाया करता था जो अब मैं नहीं गाता हूं, क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह आया है उसने मेरे जीवन को बदला है। क्या मेरा जीवन यीशु बदल रहा है? क्या मेरे स्वभाव बदल रहा है? आज क्यों हमें समस्या होती है साक्षी देने में, क्यों समस्या होती है प्रभु का भाग और हिस्सा देने में, हमें क्यों समस्या होती है प्रार्थना करने में, हम क्यों समस्या होती है घर में परिवार में पति पत्नी और परिवार को एक साथ प्रेम में लेकर चलने में, क्यों समस्या होती है दूसरे की अधीनता को स्वीकार करने में, क्यों समस्या होती है उन पुरानी चीजों को छोड़ने में, क्यों समस्या होती है इन सारी चीजों करके अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने में, क्यों समस्या होती है? इसलिए समस्या होती है क्योंकि हमारा विश्वास अधूरा है, और हमने विश्वास केवल नाम के लिए करा है लेकिन उस वचन के आधार पर जो परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं हुआ है। इसलिए कहता है लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। सो आज जो मैंने आपके सामने विश्वास रखा है, यह खास तौर से विश्वास का अर्थ क्या है और विश्वास का सूत्र क्या है। विश्वास का अर्थ यह है पूरे मस्तिष्क से, हृदय से, विवेक से, सच्चाई के साथ समझ को प्राप्त करके यीशु की ओर परिवर्तित हो जाना मन फिराने द्वारा। स्रोत यीशु है, यीशु उस विश्वास का स्रोत है, यीशु उस विश्वास का आधार है, यीशु उस विश्वास की नींव है, यीशु है। प्रभु ने चाहा तो आने वाले संडे को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और तब देंगे विश्वास अगर मेरे जीवन में है तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अगर विश्वास मेरे जीवन में है तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, काश मैं और आप व्यक्तिगत रीति सोच सके, विचार कर सके,
क्या प्रभु वो सच्चा विश्वास मेरे जीवन है, क्या मेरा और आपका विश्वास सही विश्वास है। मैं विश्वास की बातें बहुत करता हूं लेकिन क्या वो सही है, क्या इसका आरंभ शुरुआत सही रीति से वचन आधारित परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है, क्या मेरा विवेक हृदय मन समझ इस विश्वास की मुझे मैं स्वयं साक्षी दे सकता है, दूसरों को नहीं लेकिन मेरे अंदर मेरा विवेक मुझे स्वयं साक्षी देता है जो विश्वास मेरे अंदर पाता है। ये धन्यवाद, मैं जब दूसरों को साक्षी देता हूं तो मेरा हृदय क्या करता है, जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, कोई गलती होती है, कुछ होता है, हम दूसरे से बात करते हैं लेकिन विवेक काटता है, कैसा है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम सोचें थोड़ी देर के लिए और प्रभु से प्रार्थना मांगे, अपने आप को जांचें, अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव नहीं आया है आज अवसर है, प्रभु से कहे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करिए, मैं आज समझ पाया हूं कि सचमुच में विश्वास ये है और मैं उस विश्वास को अपने हृदय से ग्रहण करना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए, मुझे परिवर्तित कीजिए मन मस्तिष्क सोच, ताकि मैं उस संसार को छोड़ करके, संसार की चीजों को छोड़ करके मैं परिवर्तित होकर मेरी सोच में, मेरे समझ में, मेरे हृदय में, मेरे कार्य में, मेरी इच्छा में, मेरे पहनावों में, मेरे सब कुछ में परिवर्तित होकर मैं प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आप आने वाले हैं, क्योंकि आप आने वाले हैं और आप जीवित परमेश्वर हैं और विश्वास के द्वारा धर्मी बचाया जाएगा। मेरी आप सहायता कीजिए, मेरी आप सहायता।